नमस्कार भारत, तारीख 8 मई, दिन बुधवार। मैं हूँ मानसी दाश। एनडीए और यूपीए से हटकर शुरू हो गई है तीसरे मोर्चे की बात।
एनडीए सपोर्ट
नीरव मोदी की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई।
अगर उन्होंने तीसरी बार उनका बेल रिजेक्ट किया तो नीरव मोदी को वापस वॉन्सवर्थ प्रिजन जाना पड़ेगा, जहां पे वो फॉर द लास्ट 50 डेज रह रहे हैं।
सुनवाएंगे खास बातचीत दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के साथ।
आप क्यों राजीव गांधी की बात कर रहे हैं? राजीव गांधी तो आज है भी नहीं। कहीं ना कहीं ये घबरा गए हैं, अब ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका न तो कोई मायने है न कुछ है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इराक दौरा कर यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिका इराक को अपना समर्थन देता रहेगा। इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल मदी के साथ मुलाकात के बाद पोम्पियो ने कहा कि वे इराक को उसके पड़ोसी देश ईरान के प्रति आभारी नहीं रहने देना चाहते। अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि ईरान मध्य पूर्व में मौजूद अमरीकी सेना पर हमले की कोशिशें कर रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने वेनेजुएला की सेना को एक प्रस्ताव के तहत उन पर लग रहे प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही है। अमेरिका का कहना है कि जो सैन्य अफसर वेनेजुएला के विपक्षी नेता खुआन ग्वाइदो के समर्थन में हैं उन्हें प्रतिबंधों में छूट मिल सकेगी। एक प्रेसवार्ता में माइक पेंस ने कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला के खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख जनरल मैनुअल क्रिस्टोफर फियरा पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। माइक पेंस ने कहा,
The United States of America will consider sanctions relief for all.
अमेरिका उन सभी को प्रतिबंधों में छूट देने के बारे में सोच रहा है जो आगे बढ़कर संविधान और कानून के समर्थन में आ रहे हैं, जैसे कि जनरल मैनुअल क्रिस्टोफर ने किया। उन्होंने मादुरो की सत्ता से इस्तीफा दिया और वेनेजुएला का संविधान बचाने वाली रैली में समर्थन दिया। ये थे अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। आर्कटिक देशों की समिति की बैठक में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस समिति ने अपना अंतिम साझा बयान जारी नहीं किया। फिनलैंड में हुई यह बैठक अमेरिका की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बाद बेनतीजा रही। अमेरिका ने इस बैठक में जलवायु परिवर्तन के जिक्र का विरोध किया। हर दो साल में होने वाली आर्कटिक देशों की इस बैठक में आर्कटिक क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा होती है। इस बैठक के चेयरमैन फिनलैंड के विदेश मंत्री टीमो सोनी थे। उन्होंने कहा,
I don't name and blame anybody. I carry out the chairman responsibility.
मैं किसी का नाम लेकर किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं इस बैठक का चेयरमैन हूं और यह मेरी जिम्मेदारी है कि सभी को एक साथ लेकर चल सकूं। यह साफ है कि जलवायु परिवर्तन पर सभी देशों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। ये मतभेद इस बैठक में हल नहीं हो सकते। ये थे फिनलैंड के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जॉर्जिया अमेरिका का छठा ऐसा राज्य बन गया है जहां 6 माह के बाद के गर्भ को गिराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 6 माह के बाद किसी भ्रूण में हृदय गति महसूस की जा सकती है, भले ही उस वक्त तक उस महिला को अपने गर्भ के बारे में जानकारी भी ना हो। जॉर्जिया के गवर्नर ने इस नए कानून को लागू करते हुए कहा कि उनका काम सही चीज़ों को लागू करना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मानवाधिकार समूहों ने इस कानून का विरोध किया है। फ्रांस की पुलिस ने दक्षिण पश्चिम शहर टूलोस में स्थित एक बार में बंधक बनाई गई 4 महिलाओं को छुड़ाने में कामयाबी प्राप्त की है। बंदूकधारी एक कम उम्र के लड़के ने बार में 2 बार गोलियां चलाई थी और उसके बाद वहां मौजूद 4 महिलाओं को अपने कब्जे में कर लिया था। प्राप्त खबरों के मुताबिक वह बालक अभी भी बार में मौजूद है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने उस बालक की पहचान कर ली है और उससे किसी तरह के खतरे की आशंका नहीं जताई है। ब्राज़ील के राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक ने कहा है कि पिछले साल आग में पूरी तरह नष्ट हो चुके इस संग्रहालय को दोबारा शुरू करने के लिए और आर्थिक मदद की ज़रूरत है। अलेक्जेंडर कैलनर ने कहा कि इस संग्रहालय में लगी आग में जिन चीज़ों को बचा लिया गया उन्हें महफूज रखने के लिए $2,00,000 और चाहिए। इसके अलावा वहाँ काम करने वाले तमाम शोधार्थियों के लिए भी पैसे चाहिए। सरकार की ओर से लगभग $25,00,000 इस संग्रहालय को दोबारा तैयार करने के लिए जारी किया जा चुका है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। भारत में जेठ का महीना आने को है, लेकिन गर्मी अभी से अपने तीखे तेवर दिखा रही है। दूसरी तरफ चुनावों की गर्मी ने इस रूखे वक्त को और भी दिलचस्प बना दिया है। कहीं कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी चुनौती दिखती है, लेकिन कहीं कहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ अकेले मैदान में डटी दिखती हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां महागठबंधन से अलग अपना गठबंधन बनाकर क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में उतरी हैं, लेकिन पांचवें चरण के मतदान के खत्म होने के बाद अब स्थिति कुछ बदलती दिख रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केरल के मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पिनराई विजयन से मुलाकात कर एक बार फिर तीसरा मोर्चा बनाने की बात को हवा दे दी है। उनकी योजना आगे तृणमूल कांग्रेस की ममता बैनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती से मुलाकात करने की है। उनकी ये कवायद इस बात की ओर इशारा करती है कि क्षेत्रीय पार्टियां आने वाले दिनों में केंद्र में अपनी मजबूत भूमिका देख रही हैं। सुनिए बंगलुरु से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
चुनाव की गर्मी के बीच देश के क्षेत्रीय पार्टियां अब अलग रंग लेने लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि आंतरिक सर्वेक्षण ने क्षेत्रीय पार्टियों का हौसला बढ़ा दिया है। कुछ महीनों पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने फेडरल फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे के बारे में बात करना छोड़ दिया था, खासकर तब जब बीजेपी और कांग्रेस ने एनडीए और यूपीए के बैनर तले अपना अपना गठबंधन बना लिया। लेकिन वोटिंग के पांचवें दौर के बाद चंद्रशेखर राव ने केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात की और एक बार फिर तीसरे मोर्चे की बात छेड़ दी है। पिनराई विजयन ने कल पत्रकारों से कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। उनका मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेतृत्व वाली गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है और क्षेत्रीय पार्टियां शक्तिशाली बन सकती हैं। हम समझते हैं कि उनके विचार अच्छे थे, क्योंकि देश में संघीय भावना का उल्लंघन हो रहा है। ये थे पिनराई विजयन के शब्द। देश के संघीय ढांचे के बारे में पिनराई विजयन का बयान अहम है। 2017 में विजयन देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्रियों को कहा था कि राज्यों का अधिकार केंद्र सरकार हड़प रही है। उस समय मामला बीफ बैन का था। राज्यों की सत्ता में मौजूद क्षेत्रीय पार्टियों के रिश्ते भी केंद्र सरकार के साथ नाजुक बन गए थे। उस रिश्ते की खटास चुनावी अभियान में अब साफ दिखने को मिली है। इसी परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा बनाने निकले हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है? इस सवाल के जवाब में हैदराबाद के राजनीतिक विश्लेषक टंकशाला अशोक कहते हैं, उनका उद्देश्य है तीसरा मोर्चा केंद्र में अधिकार संभालें। अगर क्षेत्रीय पार्टियों को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस के यूपीए का समर्थन ले सकते हैं, जैसे कि कर्नाटका में एक छोटी पार्टी जनता दल सेक्युलर को बड़ी पार्टी कांग्रेस ने समर्थन दिया है, और राजनीतिक तौर पर एनडीए के समर्थन को भी वो इनकार नहीं करेंगे। अगर ऐसा भी हुआ तो ताजुब नहीं करना चाहिए। ये थे तंगसाला अशोक के शब्द। लेकिन अशोक कहते हैं कि यह मानना गलत होगा कि चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा बनाकर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर तब जब दूसरी पार्टियों के नेता मैदान में हैं जिनको चंद्रशेखर राव से भी ज्यादा सांसदों का समर्थन मिल सकता है, जैसे कि एसपी नेता अखिलेश यादव, बसपा की मायावती या फिर तृणमूल के ममता बैनर्जी। बहरहाल तीसरा मोर्चा कहां तक पहुंचेगा वो 23 मई को ही पता चलेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
अब रुख करते हैं लंदन का, जहां की एक कोर्ट में आज पेश होंगे हीरा कारोबारी नीरव मोदी। उन पर बैंकों से लिया कर्जा बिना चुकाए भारत छोड़ने का आरोप है। तीसरी बार नीरव मोदी की जमानत की अर्जी यानी बेल एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होनी है। कितनी अहम है ये सुनवाई और क्या इसका असर नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण मामले पर भी पड़ सकता है, यही जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से।
आज नीरव मोदी चीफ मैजिस्ट्रेट एमा आर्बटनॉट के सामने आएंगे। एमा आर्बटनॉट ने दूसरी बार जब नीरव मोदी ने अपने बेल एप्लीकेशन को प्रस्तुत किया था कोर्ट में, उन्होंने उनकी बेल को रिजेक्ट किया। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो 2 बिलियन पाउंड्स का बैंक लोन डिफॉल्ट किया था वो बहुत ही बड़ा रकम है और वो इसको इग्नोर नहीं कर सकती। मैंने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के लोगों से बात की ना, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक केस लड़ रहे हैं और उन्होंने मुझे ये बोला कि यूके में लोगों को सिर्फ 2 बार मौका मिलता है, तो अगर दोनों बार अगर उनका बेल रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उनको तीसरा मौका तब मिलता है जब उनके पास कुछ नया एविडेंस हो जिसके बेसिस पे वो कोर्ट को बोल सकते हैं कि उनके जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें कुछ बदलाव आया है, तो इसकी वजह से उनको तीसरा बेल एप्लीकेशन सुनना पड़ेगा। नाउ ये क्या एविडेंस है ये हमें कुछ घंटों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर जज एमा आर्बुथनॉट ने एविडेंस सुना और उनको लगा कि नीरव मोदी तीसरा बेल एप्लीकेशन डिजर्व करते हैं, उसके बाद ही वो उनको परमिशन देंगे तीसरा बेल अप्लाई करने के लिए। अब 2 बातें आज हो सकती है, एक उनका बेल एक्सेप्ट किया तो नीरव मोदी आज रात अपने फैमिली के साथ उनके 8 मिलियन पाउंड्स अपार्टमेंट में रात गुजारेंगे, लेकिन अगर उन्होंने तीसरी बार उनका बेल रिजेक्ट किया तो नीरव मोदी को वापस वॉन्सवर्थ प्रिजन जाना पड़ेगा जहां पे वो फॉर द लास्ट 50 डेज रह रहे हैं। तो इसके बाद जब तक कोई डिसीजन होता नहीं उनके एक्सट्रेडिशन को लेके तब तक उनको वॉन्सवर्थ प्रिजन में ही रहना पड़ेगा।
जानकारी दे रही थी गगन सबरवाल। कार्यक्रम में अब रुख भारत का। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इसे मिलाकर अब तक 424 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है, जबकि बची 118 सीटों के लिए 6ठे और 7वें चरण के मतदान 12 और 19 मई को होने वाले हैं। इन बची सीटों पर अब राजनीतिक पार्टियों ने अपना रुख दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों की तरफ कर लिया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां इन इलाकों में धुआंधार प्रचार में जुट गई हैं। मंगलवार को क्या कुछ अहम राजनीतिक हलचल रही, ब्यौरा सुनिए बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी से।
दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को वोटिंग होगी। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में चुनावी रैली करने वाले हैं। उनकी इस रैली से पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने नरेंद्र मोदी से 5 सवालों के जवाब मांगे।
पार्टी ने पिछली बार अलग से दिल्ली के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, इस बार आपका मैनिफेस्टो कहाँ है? दिल्ली के लोगों से किस एजेंडे पर आप वोट मांगना चाहते हो? महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिली, आपके एजेंडे से गायब है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, आपके एजेंडे से गायब है। दिल्ली के व्यापारियों के लिए कोई आपके प्रॉमिस नहीं है कि क्या करोगे आप, सीलिंग से घर टूट रहा है कैसे बचाओगे आप। दिल्ली के अनसराइज कॉलोनियों के लिए जो वादा किया था उसका कुछ नहीं हुआ। आपका जब कोई एजेंडा ही नहीं है तो आप किस लिए वोट मांग रहे हो दिल्ली के लोगों से?
इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महाभारत के दुर्योधन से करते हुए उन पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने हरियाणा के अम्बाला में चुनावी रैली की और कहा,
ये चुनाव उन करोड़ों परिवारों के बारे में है जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशाएं इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से तोड़ डाली हैं। ये चुनाव भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में है और अपनी असफलता छुपाने के लिए ये देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है, इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की।
प्रियंका गांधी के हमले का जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 23 मई को तय हो जाएगा कि कौन दुर्योधन है और कौन अर्जुन। वहीं मंगलवार को ईवीएम वीवीपैट के मसले पर 21 विपक्षी दलों की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इन विपक्षी दलों की मांग ये थी कि चुनाव के दौरान करीब 50% ईवीएम मशीनों में वीवीपैट का इंतजाम होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अदालत इस मामले में दखल नहीं देना चाहती है। विपक्षी पार्टियां ईवीएम मशीनों को वीवीपैट से जोड़ने का मुद्दा पहले भी कई बार उठा चुकी हैं। इस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि विपक्ष ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर के युग को लाना चाहता है।
जो ईवीएम विलाप मंडली है वो चुनावी जंग में जंग पूरी होने से पहले ही आत्मसमर्पण करती हुई दिख रही है। ये जो ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर के युग को लाना चाहते हैं, ये ठीक उस तरह से है जिस तरह से लाइट के युग को खत्म करके लालटेन के युग को लाने की कोशिश होगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाने से पहले चुनाव आयोग से 50% ईवीएम मशीनों में वीवीपैट लगाने के बारे में पूछा था। तब चुनाव आयोग ने अपना जवाब देते हुए कहा था कि वीवीपैट की पर्चियों के मिलान का वर्तमान तरीका सबसे उपयुक्त है। हर विधानसभा क्षेत्र में 50% ईवीएम के वोटों की गणना वीवीपैट पर्चियों से करने में लोकसभा चुनाव के नतीजे 5 दिन की देरी से आ सकते हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इससे पहले लगातार 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के नाम है। 2013 में चुनावों में हार के बाद समझा जाने लगा था कि शीला दीक्षित अघोषित रूप से राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन इसी साल जनवरी में शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष नियुक्त की गई और अब वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस की उम्मीदवार भी हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान 12 मई को होना है। इसके लिए शीला दीक्षित कितनी तैयार हैं और किन मुद्दों पर वो लड़ रही हैं चुनाव, सुनिए खास बातचीत बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद के साथ।
देखिए, हमारे 3 टर्म्स का जो राज रहा दिल्ली में, सेवा करने का मौका मिला, वो सबको मालूम है क्या हुआ था उस वक्त, दिल्ली कैसी बदली थी और दिल्ली का क्या स्थान इंडिया में वर्ल्ड में हो गया था। तो अब इन्होंने क्या किया है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। कह रहे हैं लेकिन करा क्या है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही चले जाएं तो वहाँ गंदगी के अलावा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या हुआ है, क्या अच्छे स्कूल्स बनाए हैं, क्या किया है, जो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बने हुए हैं वो भी हमारे ही किए हुए हैं, तो हमारे काम को वो थोड़ा बहुत आगे ले जा रहे हैं।
शीला जी, जो आम आदमी पार्टी है वो अपने काम को लेकर प्रचारित भी करती रही है और अभी देखने में आया है कि वो लगातार जो उसने अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया है, उसने पूर्ण राज्य को लेकर शुरू किया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दिलाया जाए। क्या लगता है कि क्या ये हो सकता है?
कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो दर्जा दिल्ली का इस वक्त है वही है। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बदला सकते हैं, बदल सकती है, तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। आपके पास ये पावर ही नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
पूर्ण राज्य को लेकर तो आपने भी कोशिशें की थी, मनमोहन सिंह सरकार जो थी, तो उस वक्त कैसे आप
इस चीज करी थी हमने, लेकिन हमें हमेशा टाला गया और कहा नहीं, हम फिर भी उस पर लगे रहे। लेकिन एक बात है कि उसकी वजह से हमने अपना काम नहीं रोका, काम करते रहे।
केजरीवाल भी ये कहते हैं कि वो हमें परेशान करते रहे और हम काम करते रहे, तो
क्या काम करते रहे, कभी तो किसी को थप्पड़ मार देते, अपने चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मार दिया, ये कोई काम है? केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप काम कर रहे हैं? आपने कहा था हम बिजली और पानी फ्री देंगे, दिया।
लेकिन शीला जी, जिस तरीके से लोगों के पास जाते हैं वो कहते हैं कि पानी का बिल तो नहीं आ रहा लेकिन बिजली का कम हुआ है।
अरे कम होना बिल या नहीं आना या छोटा सा कम हो जाना, वो तो कभी कम होता कभी ज़्यादा होता, ये तो नीति है। ये कौन सा उन्होंने कहा, उन्होंने क्या था, मैं तो ये आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कहा था कि हम फ्री दे देंगे, फ्री दिया? क्या आप उनकी तरफ से आए हैं मेरे पास?
अब मोदी सरकार के जो 5 साल का कार्यकाल है आप उसे कैसे देखते हैं?
आप बताइए कैसा है, मैंने तो सुना नहीं। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए हम सबको देंगे, दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देखते हैं कि कितना ज्यादा चुनावी रैलियों में अब आक्रामकता रहती है उनके भाषणों में, और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए कहा कि वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका समय समाप्त हुआ। तो ये जो चुनावी भाषणों की भाषा है इस पे, क्योंकि आप 80 के दशक से राजनीति में आ गए हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, बहुत बदतमीजी है ये। आप क्यों राजीव गांधी की बात कर रहे हैं? राजीव गांधी तो आज है भी नहीं, जो किया उन्होंने वो सब हिंदुस्तान जानता है। तो आप राजीव गांधी की बात क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये घबरा गए हैं, अब ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका न तो कोई मायने है न कुछ है, लेकिन उनकी तरफ से लगता है कि घबराए हुए हैं।
शीला जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट जो है वो बहुत हॉट सीट हो गई है और जो आपके विपक्षी उम्मीदवार हैं वो भी बीजेपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे हैं। आपको क्या लगता है कि आपको किससे चुनौती है?
देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। अंत में अभी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, टू अर्ली, देखेंगे क्या होता।
ये थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित, उनसे बात कर रहे थे मोहम्मद शाहिद। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में कुछ रिटायर्ड जजों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक गंभीर संकट से गुजर रहा है और इसकी साख को बहाल करने में समय लगेगा। उनका कहना है कि जिस तरह मामले को संभालना चाहिए था वैसे नहीं किया गया। कोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी ने 19 अप्रैल को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति बनाई गई थी जिसने 6 मई को रिपोर्ट सौंपी। आंतरिक समिति ने जस्टिस गोगोई को क्लीन चिट दे दी। सुनिए कोर्ट के रिटायर्ड जजों से बातचीत पर आधारित बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
जजों ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले को जैसे संभालना चाहिए था वैसे नहीं संभाला जा सका। बीबीसी ने जिन रिटायर्ड जजों से बात की उनमें से कुछ ने जांच की प्रक्रिया में खोट बताया और कुछ ने कहा कि कानूनी एतबार से फैसला शिकायत करने वाली महिला के पक्ष में कभी जा ही नहीं सकता था। लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट एक गंभीर संकट का शिकार है जिसके कारण वो काफी दुखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरएसएस सोधी ने भावुक होकर कहा,
तो दर्द इतना हुआ कि अब तो सिर्फ सह ही रहे हैं और हिम्मत नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए।
जस्टिस रंजन गोगोई ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश का नतीजा है। जस्टिस गोगोई ने कहा था शिकायतकर्ता के पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को अस्थिर करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक और रिटायर्ड जज ज्ञान सुधा मिश्र कहती हैं,
हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना। अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है तो उसको तो पता नहीं क्या अपने आप को, मतलब इतना निकृष्ट काम किसी ने किया है, अगर कॉन्स्पिरेसी की है तो, नहीं किया तो बात अलग है।
शिकायतकर्ता महिला ने 6 मई को आई रिपोर्ट के बाद एक प्रेस रिलीज जारी करके इसे अन्याय बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे जो डर था वही हुआ और देश के उच्चतम न्यायालय से इंसाफ की मेरी सभी उम्मीदें टूट गई हैं। इस रिपोर्ट की एक कॉपी जस्टिस रंजन गोगोई को भी सौंपी गई है। शिकायतकर्ता महिला को रिपोर्ट नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक और रिटायर्ड जज अशोक गांगुली ने कोलकाता से फोन पर कहा कि वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते क्योंकि वो इस रिपोर्ट के खिलाफ बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहेंगे नहीं। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि उन्हें महिला की ओर से बहुत खेद है। जस्टिस आरएसएस सोधी कहते हैं कि जांच की प्रक्रिया में थोड़ा खोट है।
ये प्रोसीजर अपीयर्स टू बी लिटिल फ्लॉड, तो उसको असिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। वो चीफ जस्टिस के बरखिलाफ
जी
इंक्वायरी के अंदर भी अपना पक्ष नहीं रख सकती इन द मैनर शी कुड हैव सीइंग द डिस्पैरिटी।
उनका कहना था कि आरोप लगाने वाली महिला ने पूछताछ के दौरान अगर वकील की मांग की थी तो उसकी मांग पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन जस्टिस सुधा मिश्र कहती हैं कि शिकायतकर्ता महिला की वो फैन नहीं है। उनके अनुसार महिला ने लड़ाई शुरू की लेकिन ठीक समय पर पीछे हट गई।
ये होना ही था इसलिए क्योंकि उसने फाइट आउट ही नहीं किया, उसने कंटेस्ट नहीं किया और कंटेस्ट के बिना क्या छोटी से छोटी लड़ाई हो, कंटेस्ट तो करना ही पड़ेगा।
रिटायर्ड जजों को चिंता इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और इसकी प्रतिष्ठा को बहाल कैसे किया जाए। जस्टिस सोधी कहते हैं कि शिकायतकर्ता महिला अगर ये मांग करे कि जांच दोबारा होनी चाहिए तो उसकी मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे एक वकील भी लाने की इजाज़त देनी चाहिए, शायद इससे अदालत की विश्वसनीयता बहाल हो जाए। रिटायर्ड जजों का कहना था कि मामले की तह तक जाना ज़रूरी है और इस उच्चतम संस्था की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए हर कदम को उठाना भी ज़रूरी है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास छपा है। नवीन नेगी स्टूडियो में हमारे साथ हैं अखबारों के साथ। नवीन, पहले पन्ने पर आज आपको क्या दिख रहा है?
जी मानसी जी, दिल्ली से छपे तमाम अखबारों में आज पहले पन्ने पर वही खबर है जिस रिपोर्ट को हम अभी अभी सुन रहे थे। ज़ुबैर अहमद की रिपोर्ट थी, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने दी थी, उसमें क्लीन चिट दी थी। तो इस पर कल काफ़ी हंगामा हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कई महिला कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इसी उन्हीं की तस्वीरें, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हैं। मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स रखा है जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो है जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया, जबकि जो शिकायतकर्ता है उनका कहना है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, और उनका कहना है कि मेरा हक है कि मैं उस रिपोर्ट को देखूं कि उसको किस तरीके से उनको क्लीन चिट दी गई है। ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, लेकिन एक तस्वीर है जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा, और ये इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर ये तस्वीर प्रकाशित है। खिलखिलाते हुए से चेहरे हैं, और ये चेहरे हैं दरअसल उन दो पत्रकारों के जो म्यांमार की जेल से कल रिहा हो गए। अपने दो बच्चों के साथ हैं वो दोनों पत्रकार, अपने अपने बच्चों के साथ, और 500 दिन जेल में रहने के बाद ये कल रिहा हुए। रॉयटर्स
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार, रॉयटर्स से जुड़े पत्रकार थे जो रोहिंग्या संकट पर कुछ रिपोर्ट वहां करने गए थे।
जी मानसी जी, चुनावों से जुड़ी खबरों पर आए तो सारे अखबार चुनावों ही कवरेज से भरे पड़े हैं। तमाम विपक्षी दलों ने मांग की थी कि वीवीपीएट की जो 50% जो पर्चियां होंगी उनकी मिलान करवाने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को जो खारिज कर दिया है। इस खबर को भी कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और वहीं एक और खबर जो हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित है, वो पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आतिशी मार्लेना, उनके धर्म को बताने वाला एक ट्वीट दिल्ली के ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया था। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है, और उन्हें 8 मई यानी कि आज शाम तक जो है उन्हें जवाब देने के लिए कहा है कि वे जवाब दें कि आखिर उन्होंने धर्म का क्यों उसमें जिक्र किया। एक और खबर है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, वो है कि मीडिया को रिश्वत देने के मामले में जो है बीजेपी के खिलाफ FIR हो सकती है। ये मामला जम्मू कश्मीर के लेह इलाके का है, और वहाँ की जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले की जाँच करवाई थी, जिसमें जो है उन्हें शुरुआती जाँच में आरोपों को सही पाया है।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद नवीन नेगी। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। IPL 12 के पहले क्वालिफायर में कल मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को उसी के घर में बेहद आसानी से 6 विकेट से बात दी और फाइनल का टिकट भी हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए केवल 132 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सूर्य कुमार यादव के नाबाद 71 और हार्दिक पांड्या के नाबाद 13 रन की मदद से 18.3 ओवर में हासिल कर लिया। एक समय जब कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक के रूप में 2 विकेट खोने के बाद मुंबई का स्कोर केवल 21 रन था, तब कुछ लगा कि चेन्नई वापसी कर रही है, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने 3rd विकेट के लिए 80 रन जोड़कर मुंबई को जीत की मंजिल दिखा दी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी टीम तब गहरे संकट में पड़ गई जब उसके शुरुआती 3 विकेट केवल 32 रन पर गिर गए। और फिर जैसे तैसे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 29 गेंदों पर नाबाद 37 और अंबाती रायडू ने 37 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए, लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी थी। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस सीधे सीधे फाइनल में पहुंच गई, लेकिन हार के बावजूद चेन्नई फाइनल की दौड़ में है। अभी उसे शुक्रवार को आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से खेलने का मौका मिलेगा।
और कार्यक्रम के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
BBC समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इराक दौरा कर यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिका इराक को अपना समर्थन देता रहेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने वेनेजुएला की सेना को एक प्रस्ताव के तहत उन पर लग रहे प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही है। आर्कटिक देशों की समिति की बैठक में पहली बार ऐसा हुआ है कि समिति ने अपना अंतिम साझा बयान जारी नहीं किया है। फिनलैंड में हुई यह बैठक अमेरिका की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बाद बेनतीजा रही। जॉर्जिया अमेरिका का 6ठा ऐसा राज्य बन गया है जहां 6 माह के बाद के गर्भ को गिराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ब्राजील के राष्ट्र संग्रहालय के निदेशक ने कहा है कि पिछले साल आग में पूरी तरह नष्ट हो चुके संग्रहालय को दोबारा शुरू करने के लिए और अधिक आर्थिक मदद की जरूरत है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।